તારીખ 28/1/1993 શ્રી સમયસાર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 94 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 45.
ૃતાંગતાં આયાતીતો યોત ગ્રહરૂપ વિદ્યમાન હૈ એસા ચેતન પદાર્થ ગ્રહરૂપ તો વિદ્યમાન હૈ વસ્તુ રૂપ સે તો વિદ્યમાન હૈ એસા ચેતન પદાર્થ अपने अनुभव में स्वरूप से नष्ट हुआ था विद्यमान है इसलिए वस्तु से नष्ट नहीं हुआ था यदि वस्तु रूप से नष्ट हुआ होता तो विद्यमान नहीं होता ग्रह रूप से तो विद्यमान है लेकिन अपने अनुभव में स्वरूप से नष्ट हुआ था मैंने अपना अस्तित्व को अपनी मौजूदगी को वो अनुभव नहीं करता था फिर उस स्वरूप को प्राप्त हुआ तो फिर अपने स्वरूप का अनुभव में वो आया ऐसे भाव को प्राप्त होता है ऐसे भाव को स्वानुभव के काल में प्राप्त होता है कि पहले मैं स्वरूप से नष्ट हो रहा था अभी मेरी उपस्थिति मेरी विद्यमानता को मैं अनुभव करता हूं इसका दृष्टांत दिया है कि किस तरह से कि पानी के समान पानी का दृष्टांत देते हैं तो पानी के समान पानी जिस प्रकार पानी गर्म कोई हुआ था तो स्वतः ही वो शीतल होने लग जाता है तो गर्म हुआ था उस वक्त जैसा शीतल स्वभाव है वैसी उनकी अवस्था नहीं थी अवस्था में अपना स्वभाव को विरुद्ध स्वभाव से विरुद्ध परिणाम था और ठंडा स्वतः होने लगा इस तरह से वो पीछे कहेंगे खोल करके क्या करके कि आत्मा में आत्मनि सदा आहरण आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ कैसे अपने स्वभाव को अपने भाव को प्राप्त करता है स्वरूप को कि अपने में अपने आप को निरंतर अनुभव करने से वो स्वरूप को प्राप्त होता है अनुभव से प्राप्ति है अनुभव बिना प्राप्ति नहीं है कहीं भी मतलब जानकारी से प्राप्ति नहीं दूसरे कोई क्रिया से क्रियाकांड से भी प्राप्ति नहीं कोई सुराग से भी प्राप्ति नहीं केवल अपना अनुभव से अपनी प्राप्ति होती है कैसा है आत्मा कि तुम एक रसी नाम विज्ञान एक रस अनुभव रसिक है जो पुरुष उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है क्या कहा थोड़ा मार्मिक बात है कि जिसको अनुभव का रस है अनुभव करने का जिसको रस है सुराग का रस नहीं है दूसरी क्रियाकांड का रस नहीं है पूजा भक्ति का रस नहीं है दूसरे दूसरे विकल्पों का रस नहीं है जिसको स्वानुभव का रस है ऐसे पुरुष को, ऐसे आत्मा को ज्ञान गुण अनुभव में आता है। ज्ञान का भेदन, ज्ञान गुण मैंने ज्ञान का जो भेदन है उसका, उसको आस्वाद मैंने अनुभव होता है, उसका भेदन आता है। ज्ञान का भेदन में आत्मा का भेदन हो जाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पूरा का पूरा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से वो अनुभव में आता है, आस्वाद में आता है। किसको आता है? जो अनुभव रसिक है उनको। जिसको अनुभव का रस नहीं है उनको अवश्य अवश्य राग का रस है, वो अनात्म रस है। आत्म रस नहीं है उनको, अनात्म रस है। कैसा होता हुआ, कैसा हुआ है कि निजो भात छूत हो, जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ द्रव्यत्व स्वभाव है। पानी को दृष्टांत में द्रव्य रूप लेते हैं, एक द्रव्य, तो उसका स्वभाव क्या है? शीत और स्वच्छ, निर्मलता, स्वच्छता, निर्मलता और ठंडापन उनका स्वरूप है, स्वभाव है। उस स्वभाव से कभी शीत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उसी प्रकार जीव द्रव का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है, अनंत गुण स्वरूप है, उससे अनादि काल से लेकर भ्रष्ट हुआ है, विभाव रूप परिणमा है। मूल स्वरूप जैसा है वैसे उनकी दशा परिणमन में दिखने में नहीं आती। कब से? अनादि से। जैसे पानी कभी गर्म होता है सूर्य की गर्मी से, आदमी के ताप से, वैसे कर्म के उदय का संग करने से जीव को क्या हुआ? जैसे पानी में अग्नि का संग किया तो अपना शीतल स्वभाव का परिणमन नहीं रहा, गर्म अवस्था रूप उसका परिणमन हुआ। वैसे कर्म का उदय का संग करने से जीव को अपना जो स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि, वैसा उनका अनादि से परिणमन नहीं है। अनादि से कर्म का संग करता है, उदय के संग में जाकर के स्वयं परिणमता है, वो अपनी गलती है, कर्म की गलती नहीं है, और कर्म कोई जबरदस्ती करता भी नहीं है, लेकिन अपनी भूल से, अपना स्वरूप का अज्ञान होने से, अभान होने से सहज कर्म के संग में परिणमन होने से वो स्वभाव से च्युत हुआ है, अनादि से स्वभाव से च्युत हुआ है। अनादि का मतलब यह है कि कभी पहला स्वभाव रूप था और बाद में च्युत हुई है, ऐसा नहीं है। ऐसा अनादि काल से लेकर भ्रष्ट हुआ है, विभाव रूप परिणमन कर रहा है, और भ्रष्ट बना जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं कि दूरम भूरे विकल्प जाल ग्रहणे ब्राह्मण। अनादि काल से लेकर अति बहुत है कर्म जनित जितने भाव, विकल्प का अर्थ क्या किया? कर्म जनित भाव। क्यों? कि मन वाले प्राणी को तो विकल्प है, लेकिन असंगी चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, चौरेंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री को तो विकल्प होता नहीं, मन में तो विकल्प नहीं, लेकिन जैसा कर्म का उदय है उस कर्म के उदय का संग में जा करके वैसा परिणमन हो जाता है उसका विभाव रूप। हाँ, वो भी भूल लेवा, પ્રગટ પર્યાય ઉપરથી એનો ગુણ લેવો. એવો સ્વભાવ કેવો છે કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ હોય એસા ઉનકા સ્વભાવ હૈ, કેવળ દર્શન પ્રગટ હોય એસા દર્શન સ્વભાવ હૈ, અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવ હૈ, સર્વદર્શિત્વ સ્વભાવ હૈ, પરિપૂર્ણ સુખરૂપ સ્વભાવ હૈ, એસે ગુણ હૈ, એસા ઇત્યાદિ અનંત ગુણ સ્વરૂપ હૈ, એસા લિયા હૈ. ક્યા લિયા? ઇત્યાદિ અનંત ગુણ સ્વરૂપ હૈ, ગુણ લેના. એસા પરિણમન જૈસા ગુણ હૈ, એસા પરિણમન નહીં હો રહા હૈ. ક્યો? કે કર્મ જનિત જીતને ભાવ ઉનમે આત્મરૂપ સંસ્કાર બુદ્ધિ ઉસકા સમૂહ વહી હૈ અટવી વન. મેં બહુત ગહરા જંગલ ઉસમે ભ્રમતા હુઆ, જંગલ મેં ભૂલા પડ ગયા હૈ. ક્યા? બહુત ગાઢ જંગલ હૈ, ઉસમે ભૂલા પડ ગયા. ઇસ પ્રકાર કા જંગલ હૈ કે કર્મ જનિત ભાવો કા, ઉતને પ્રકાર કે કર્મ જનિત પરિણામ હૈ કે ઉનકે સાથ એકત્વ કે આત્મરૂપ સંસ્કાર બુદ્ધિ હૈ. ક્યા? આત્મરૂપ સંસ્કાર બુદ્ધિ હૈ. ભાષા એસી હૈ કે સમજ મેં નહીં આવે. થોડા અપને પરિણામો કા અવલોકન કરે તો અપના જો કર્મજનિત અવસ્થા હૈ વૈસે મનુષ્યપણા, તો મનુષ્યપણા કા મેં મનુષ્ય હું, ફલાણા મનુષ્ય મેં હું, ઉસકા પરિણામ કિતના ગહન હૈ કે મેં આત્મા હું, વો બાત બુદ્ધિગમ્ય હોતે હુએ ભી મેં મનુષ્ય હું એસા પરિણમન હટતા છૂટતા નહીં હૈ, હટતા નહીં હૈ. ક્યોં? બહુત ગહન ચલા ગયા હૈ, વો ગહન વન મેં ચલા ગયા હૈ, અતિ ભૂલા પડ ગયા હૈ. સુબહ કી ચર્ચા મેં એક બાત આઈ થી, કલ આઈ થી, આજ આઈ થી, સંસાર કે કુટુંબ મેં, કલ આઈ થી, હમ તો મહેમાન હૈ. દેખિયે ઘર મેં મહેમાન કી તરહ રહ જાતા હૈ ક્યા? માલિક બન જાતા હૈ. ઇસ ઘર કા મેં ધણી હું, ઓર જૈસા મેં ચાહું વૈસા હોના ચાહિયે ઇસ ઘર મેં. મેં ચાહું અગર એસા નહીં હો તો ફિર મેરી ઘર મેં ચલતી નહીં. ઈ ઘર મેરા કેસા? મેરા ઘર મેં તો મેરી ચલની ચાહિયે. હા, તેરા ઘર નહીં હૈ, તેરા કુછ ભી નહીં હૈ, એસી બાત હૈ. કિતના ગહન જતા હૈ, બહુત ઊંડા 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 ચલા જતા હૈ. યે બાત હોતી હૈ. 20 સાલ કી ઉમર મેં, 17 સાલ કી ઉમર મેં નિકા હૈ, 17 સાલ કી ઉમર મેં સંસાર કા મહેમાન હૈ. મહેમાન કુછ દિન તક રહેતા હૈ, હમેશા તો મહેમાન રહેતે નહીં. હમ ભી ઘર મેં હમેશા રહેંગે ક્યા? અનંત કાલ મેં તો 2 દિન ભી નહીં હૈ. અનંત કાલ મેં યે 150 સાલ કી આયુ હૈ, વો 2 દિન ભી નહીં હૈ. वो तो पानी समुद्र में एक बिंदु के जितना उसका परिमाण है. कितना? वो बिंदु कैसा? जैसे वो जन जन उड़ती है ना फुहारा में, बारीक बिंदु, इतना बारीक काल है 150 साल का. और उसमें पूरा का पूरा मान लेता है, मैं यहां से जाने वाला नहीं, मैं यहां से हटने वाला नहीं, और जैसा मैं चाहूं वैसा सब होना चाहिए. पकड़ कितनी है। अनित्य अनित्य पदार्थ पर नित्यता की कल्पना जमा रखी है और वास्तविकता तो मिटने वाली है नहीं। तो वास्तविक प्रसंग आ जाएगा, अनित्यता पूरी हो जाएगी और नित्यता की कल्पना बहुत दृढ़ हो गई है तो उसका प्रत्याघात भी आने वाला है, वो तो प्रत्याघात से छूट नहीं पाएगा, ये बात हो जाएगी। यही कारण है मृत्यु का दुख होने का जो कारण है वो वही है कि अनित्यता में नित्यता बहुत गाढ़ नित्यता कर रखी है, मान रखी है, तो उसका रिएक्शन आता है फिर बाद में। मान घर पे आता है तो इतना दिन ठहरना है, बाद में हमारी टिकट मंगवा लो तो उसका टिकट आ जाता है तो ठीक है, अच्छा है। उसको कोई ये नहीं होता कि क्यों टिकट आई, पहले से जो मानसिक रूप से तैयार है तो हमारा उतना ही मुद्दत है। तो जिसको 35-40 साल हो गया उनको तो आधा से तो ज्यादा चला गया, अब जो भी बाकी है वो अनिश्चित है, मैक्सिमम आधा है, 70-80 साल मैक्सिमम एवरेज ले लो, वो भी अनिश्चित है। अब तो जीवन व्यर्थ से व्यतीत करना है या आत्मार्थ में व्यतीत करना है उतना विवेक करना है। अगर देहार्थ में व्यतीत करेंगे तो बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, कुदरत ये स्थान बार बार नहीं देते। अगर आत्मार्थ की दरकार हुई तो कितना भी अच्छा काम कर सकता है, निर्वाण पद का रिजर्वेशन हो सकता है इधर, ऐसी बात है। क्या कहा कि अनादि काल से लेकर अति बहुत है कर्म विनित जितने भाव, बहुत मान्यता कितने हजारों मान्यता कर रखी है, इसका ऐसा, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, बेटे के साथ पसंद, बाप बाप के पास बेटा, हजार जितने भी संबंध है समाज के, उनके 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 सब कल्पना कर्म विनित, बहुत कर्मजनित भाव, उनमें आत्मरूप संस्कार बुद्धि, एकत्व बुद्धि, उसको संस्कार कहते हैं, आत्मा रूप ऐसा ही मेरा स्वरूप है और उसका समूह जाल, उसमें जाल में पकड़ा गया, जैसे कोई प्राणी को जाल में फंसाते हैं वैसे ये जीव भी संसार की कल्पना में फंसा हुआ है और ये वही है अटवी वन। मैंने यही एक ऐसा बड़ा जंगल है, कर्मजनित भावों का बड़ा जंगल है, उसमें जीव भ्रमण करता है, एक विकल्प को छोड़कर दूसरा, दूसरा भाव को छोड़कर तीसरा, तीसरे का छोड़कर चौथा, उसी उसमें भ्रमण करता है सारे दिन 24 घंटा, उसमें कर्म जनित भाव में भ्रमण करता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ नाना वृक्ष रूप परिणमता है, उसी प्रकार जीव द्रव अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप अपने को आस्वाता है। पानी तो पानी है, नीम के पेड़ में जाता है तो कड़वा लगता है, उसका रस कड़वा लगता है, आम के पेड़ में जाता है तो उसका रस मीठा होता है, पानी तो पानी है लेकिन अनेक रूप धारण करता है, वैसे यह जीव भी अनेक अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ, शुद्ध स्वरूप को भुला हुआ, अनेक प्रकार की चार गति रूप पर्याय रूप अपने को अनुमरण करता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा अनेक रूप अपना अनुभव करता है, मूल स्वरूप को नहीं जानता। बलजोरी से अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्कर्म अवस्था उस रूप परिणमा है। बलजोरी से अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्कर्म अवस्था उस रूप परिणमा है। हुआ तो कैसा हुआ कि बलजोरी से, फिर पुरुषार्थ करने से अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण जो निष्कर्म अवस्था है उस परिणमा हुआ है, परिणमा है। तो पुरुषार्थ करने से अपने स्वरूप रूप परिणमन कर सकता है अगर चाहे तो, उस प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा निज जिस कारण से हुआ वही कहते हैं, वो किस कारण से निष्कर्म रूप शुद्ध अवस्था होती है, मैंने मोक्ष अवस्था, पुरुषार्थ से मोक्ष अवस्था होती है तो क्या कारण करके ऐसी अवस्था होती है, उसके पूर्व कारण कैसा है। निजोघम, निजोघम का अर्थ है अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्कर्म अवस्था, तो क्या है कि वो तो पूर्ण अवस्था लिया है, निर्वाण पद ले लिया है, पुरुषार्थ से वो निर्वाण पद की प्राप्ति जीव करता है, संसार से छूट करके पुरुषार्थ करके निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। तो निर्वाण कर पद की प्राप्ति किस कारण से करता है उस बात को खोलनी है, पीछे इस बात को खोलनी है। तो पीछे वाली बात पहले बता दिया और पहले वाली बात अब बताएंगे कि अनंत काल फिरते हुए प्राप्त हुआ ऐसा जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ऐसा जो नीचा मार्ग, उस कारण से जीव द्रव्य का जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट हुआ। क्या कहते हैं कि कैसे निर्वाण पद की प्राप्ति हुई कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से, कारण दूसरा नहीं लिया। राजमुनि जी की टीका में ये विशेषता है कि हर जगह उन्होंने अपने शुद्धात्मानुभव को ही महत्व दिया है और यही उनको अपने जो कलश है आचार्य महाराज के उसमें उनको यही बात मुख्य लगी है कि स्वानुभव करने से ही कार्य सिद्धि है, आत्मानुभव के बिना सब बात फालतू ही फालतू समझो, इतना वजन रखा है। तो हाँ, वो अध्यात्म प्रधानता, उसका टीका करने की जो शैली है, पद्धति है, वो अध्यात्म प्रधान है। ऐसा विवेक निम्न गमनात्, विवेक का अर्थ क्या, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वही विवेक, अपना स्वरूप का अनुभव नहीं करना वही है विवेक, बात खत्म। वाह। जैसा अपना शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, उसको वैसा अनुभव नहीं करके मलिन रूप से अपना अनुभव करना तो वो क्या अविवेक नहीं है क्या। तो ये पारमार्थिक विवेक और पारमार्थिक अविवेक सीधी बात है। अनंत काल फिरते हुए प्राप्त हुआ ऐसा जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव अनंत काल भ्रमण करते करते जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो उससे अपना निष्कर्म अवस्था जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति का कारण मिल गया। वहां तक मोक्ष का कोई कारण नहीं है। मोक्ष का कारण क्या? कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव वही मोक्ष का एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बस ये सीधी सादी बात है। क्या करना? कि अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, बस। लंबी चौड़ी बात में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, बस। ये एक कारण है, निर्वाण पद का एकमात्र यही कारण है। अध्यात्म में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अध्यात्म है वो खुद आराधक परिणाम है, और आराधक परिणाम अपने आराध्य स्वरूप के साथ संबंध रखता है। बात खत्म। स्वरूप भी अपना और उसमें आराधन भी अपना। वो विस्तार कहां करोगे? कोई विस्तार की जगह नहीं है। फिर निम्न गमनात नीचा मार्ग, वो तो क्या दृष्टांत के साथ मेल खाने का है कि पानी है, उखाड़ जाता है, ऊपर चढ़ाना हो पानी को तो उसमें कोई साधन चाहिए, लेकिन पानी को नीचे जाने में कोई साधन नहीं चाहिए। अपने यहाँ रोज का अनुभव है, ऊपर टंकी रखते हैं ना, वहां तो चढ़ाना पड़ता है मोटर से, फिर उतारने के लिए तो कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ती। पानी नीचे सहज रूप से ग्रहण करता है, उसमें मर्म बहुत अच्छा है। वो दृष्टांत में कि आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमता है, वो सहज परिणमता है। जैसे पानी सहज नीचे गमन करता है, पानी का नीचा गमन है वो सहज है, वैसे आत्मा को आत्मा रूप परिणमना वो सहज है, अनात्मा रूप परिणमना वो असहज है, ऐसा कहते हैं। सही बात है। ये विपरीतता उतनी सहज आदत से हो गई है कि अपने को स्वभाव रूप परिणमना वो कठिन लगता है। ये बात हो गई है उल्टी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो अपने में अपना परिणाम जम जावे वो बहुत सहज है। क्यों बहुत सहज है? कि ऐसा ही परिणमन करना अपना स्वभाव है। जैसे पानी को नीचे गिरना उसका स्वभाव है, वैसे आत्मा को आत्मा रूप परिणमन करे वही उसका स्वभाव है, विभाव रूप परिणमन करे वो उसका स्वभाव नहीं है। वो तो आत्मा पर बलात्कार होता है तब विभाव होता है, ये बात है उसमें। तो सही बात तो है कि स्वभाव पर का ये बलात्कार है जब विभाव होता है। खुद दूसरा का तो कोई प्रवेश नहीं है, कोई कर्म का परमाणु, और कोई दूसरा जीव तो अपने को स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रवेश तो करे ही कहां से, लेकिन स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो खुद ही अपने पर बलात्कार करके उल्टा परिणमन करता है। तो बलात्कार को छोड़ देवे तो सहज से कुछ उल्टा परिणाम हो जाए, ये इनका स्वभाव है। थोड़ा विषय अनजाना होने से बात उतनी ठीक नहीं लगती है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। ये क्या होता है कि जो ज्ञानी हुए और जो ज्ञानी ध्यानी है, क्या ज्ञानी है स्वरूप के और जो ज्ञानी ध्यानी है, उनको ध्यान में बैठते हुए उसका ध्यान जमता जाता है। जितना ज्यादा बैठता है उनका ध्यान जमता जाता है। जैसे घी है वो ठंडा पड़ने से क्या है, स्वतः जमता जाता है कि नहीं? हाँ, निवी होता जाता है। घी जो लिक्विड है उसमें से सॉलिड होता जाता है। ऐसे आत्मा भी स्वरूप ध्यान में विज्ञान घन होता जाता है सहज रूप से। ये इनका एक स्वरूप है, सहज स्वभाव है, ऐसा होना इनका सहज स्वभाव है। लेकिन उस मार्ग के, उस कार्य के अनजाने होने से जाते। जैसे ये लोग टीवी देखते हैं, उसमें अपने रुचि का प्रोग्राम हो, क्रिकेट के रसिक उनको हो, जिसको जो वादित संगीत के रसिक है उनको कोई संगीत का प्रोग्राम मिल जावे, जो भी अभी किसका चलता है तो उनका चलता है, कोई गायक अच्छे अच्छे होते हैं ना तो उनका प्रोग्राम चलते हैं, फिर उनको उठाओ दो, तो आपको कोई मिलने को आए, जरा बाहर आइए, तो उनको कैसा लगता है? हाँ, कि यहाँ का रस छोड़ करके दूसरे से वो बात करना नहीं चाहता है। ऐसी बात है, खाने का टाइम हो गया तो खाना इधर लाओ, क्या खाना भी इधर लाओ, होता है कि नहीं होता है? ये रस है, जहां रस जमता है वहां से जीव खिसकना नहीं चाहता, वहां तो आकुलता है। फिर भी आकुलता है लेकिन अपना रस रुचि सुख की कल्पना कर रखी है, तो भी वहां से अपना नहीं चाहता, तो ये तो शांत रस है। ऐसा है उसकी जो शांति है वो जमती जाती, जमती जाती है शांति उसकी, कैसे निकले वहां से? शांति छोड़कर अशांति में क्या है? ऐसी बात है, इसलिए निम्न वाला शब्द लिखा है, ये कारण से लिखा है। तो राजमन जी ने अपने ढंग से इसका अर्थ कथन किया है। समय सार में शब्द का अर्थ में ऐसा नहीं लिया है, दूसरे ढंग से बात लिया है कि पानी जैसे ढाल में गिरता है, ऐसे बात लिया है। जैसे पानी अपने समूह से छूट हुआ दूर गहन मन में भ्रमित होकर भ्रमता है, भ्रमण करता है, उसको दूर से ढाल विचार का मार्ग द्वारा अपने समूह तरफ बल से लाने में आवे, तो फिर पानी पानी के समूह को खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर अपने समुद्र में आकर मिलता है। उसे बारिश पड़ता है, जंगल में पानी गिरता है बरसात का, तो अनेक जगह वो भ्रमण करता है, फिर क्या है कि कोई ढाल मिलता है तो नीचा में आकर के अलग अलग जगह से पानी निशान में आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो नदी का रूप धारण करता है। अलग अलग जगह से पानी एक जगह आकर के निशान में आकर के, तो
फिर वो नदी का रूप धारण करता है, फिर वो निशान में आगे बढ़ करके समुद्र तक पहुंच जाता है। तो पहले तो जंगल में वो गिरा है, जंगल में ऐसे 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 बहुत सीधा रास्ता नहीं है उसका चलने का, लेकिन उसका स्वभाव नीचे आ जाने का है। तो एक जगह आकर के वो प्रवाह रूप होकर के समुद्र तक चले जाता है, कहीं चले जाता है। वो दृष्टांत लिया है, दृष्टांत ऐसा लिया है राजमल जी ने, वो श्रीकृष्ण वाला थोड़ा लिया है, ऐसा लिया है। और अलग अलग वृक्ष में जाता है तो दूसरा स्वाद धारण कर रहा है, मन में ऐसा बात नहीं लिया है, तो अपना हिसाब से पिता किया है, ये बात है। ऐसे आत्मा अपना विज्ञान घन स्वभाव से च्युत हुआ, प्रचुर विकल्प जाल में गहन में दूर दूर भ्रमण करता था, वह दूर से ही विवेक रूपी निचान वाला निंद मार्ग मिलने से अपने विज्ञान गुण स्वभाव तरफ बल से मैंने जोर से पुरुषार्थ से उसको खींचने में लालने में आया। और पानी में भी क्या होता है, निचान में जब वो प्रवाह में मिलता है तो उसमें ताकत आती है, तनाव आता है। पानी नदी में तैर आता है तो बहुत उसमें ताकत होती है, आदमी को खींच लेता है, हाथी को खींच लेता है। हाथी हो जाएगा तो वो भी तैर में निकल जाता है, इतनी ताकत उसमें आती है। क्यों, ऊपर से ढाल में से आता है तो फिर जब तीर पकड़ता है गति उसकी होती है तो उसमें ताकत आती है। काइनेटिक एनर्जी लेते हैं ना, केवल विज्ञान घन ही विज्ञान घन के रसीले पुरुष को ही एक विज्ञान रस वाला वो अनुभव में आता है। ऐसा आत्मा आत्मा को आत्मा में खींचता हुआ क्या आत्मा आत्मा को आत्मा में खींचता हुआ, वो स्वयं अपना एक ही बात है। उल्टा भी खुद गया पर सुलटा भी खुद आया, तो अपने को अपने आप में खींचता है। ज्ञानी संसार में उदास क्यों है और अज्ञानी संसार में आसक्त क्यों है, तो उसका खिंचाव उधर है, इसका खिंचाव उधर है। उसने वहां सुख मान रखा है तो उसका खिंचाव संसार में है, वास्तव में सुख अंदर में है तो अनुभव में आता है तो खिंचाव अंदर का होता है। तो आत्मा आत्मा में खिंचाव करके आता है, खींच करके आता है। अर्थात ज्ञान ज्ञान को खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आकर के मिल जाता है, उसी का अर्थ है। लेकिन जी ने मेरे को ये अर्थ लिया है कि जैसे जल जल के निवास में से कोई मार्ग बाहर कोई मार्ग से बाहर निकल करके वन में जंगल में अनेक जगह पर चला जाता है, भमता है, पीछे कोई नीचे वाला मार्ग गुजारा, जैसा था वैसा ही अपने निवास स्थान में आकर के मिलता है। उस प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व का मार्ग से स्वभाव से बाहर निकला था और विकल्पों के गहन मन में भ्रमण करता था। कोई भेद विज्ञान रूपी ढाल वाला मार्ग मिल जाने से विवेक का अर्थ लिया जयचंद जी ने, भेद विज्ञान वाला ढाल वाला मार्ग भेद विज्ञान रूपी ढाल वाला मार्ग मिल जाने से निचान वाला मार्ग मिल जाने से अपने को अपने आप में खींचता हुआ विज्ञान घन स्वभाव में आकर के मिल जाता है। कहते अनंत काल फिरते हुए प्राप्त हुआ है भी ऐसा जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, अनंत काल भ्रमण करते करते जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो उसको मार्ग मिल गया है, अंदर में अंतर्मुख होने का मार्ग मिल गया। तो वो नीचा मार्ग मिल गया अंतर्मुख होने का, उस कारण से जीव द्रव का जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट हुआ, निर्वाण पद में जैसा मूल स्वरूप था वैसी अवस्था हो गई, उसको सिद्ध अवस्था कहने में आती है। तो जैसा स्वरूप है वैसी अवस्था उसको सिद्ध अवस्था कहने में आती है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पानी अपने स्वरूप से दृष्ट होता है, काल निमित्त आकर पुनः जल रूप होता है, लेकिन ये पानी स्वरूप से दृष्ट होता हुआ हवा बन जाती है, उसका वाष्पीकरण होकर के हवा बन जाती है, जो हवा में मॉइस्चर जिसको अपन कहते हैं, और फिर उसको ठंड लगती है तो फिर वो पानी बनता है कि नहीं बनता है, कि फिर वो जल रूप बन जाता है। इस प्रकार पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है, काल निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है, और निचले मार्ग से ढलकता हुआ पुंज रूप भी होता है, इकट्ठा होता है। उसी प्रकार जीव द्रव अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है। जो मुद्दे की बात वो है, जो विचार करना है वो इस बात पर विचार करना है कि मेरा आत्मा अनादि से अपने स्वरूप से भ्रष्ट है, अपना स्वरूप का पता उसको नहीं है, घूमता है बार भाव से और द्रव से परिभ्रमण करता है। भाव का भी भ्रमण है पर द्रव से भी जन्म मरण को परिभ्रमण, चौदह ब्रह्मांड में परिभ्रमण करता है। शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक्त गुण के प्रकट होने पर मुक्त होता है। मुक्त अवस्था के बाद पहले से लिया है उन्होंने कि शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक्त गुण, सम्यक्त गुण का लक्षण क्या लिया है, शुद्ध स्वरूप लक्षण, शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव हुआ यही सम्यक्त गुण का लक्षण है। ऐसे सम्यक्त गुण के प्रकट होने पर मुक्त होता है, सम्यक दर्शन होने से, सम्यक्त प्रकट होने से, सानुभव होने से आगे जाकर के मुक्त हो जाएगा। जो जिस जीव को स्वानुभव और सम्यक होता है उसके असंख्य समय में मुक्ति होती ही है। क्या? क्योंकि उसको ढाल वाला मार्ग मिल गया। बाहर जो इनके परिणाम जाएंगे साधक अवस्था में, जिस मात्रा में जाएंगे, जिस अंश में जाएंगे, वहां उसको दुख का अनुभव होगा, और साधक अवस्था में जिस अंश में परिणाम अपने स्वरूप में रहता है जाता है उसमें शांति और सुख का अनुभव होता है। जब सुख और दुख दोनों एक अवस्था में उसको होता है तो कहा जाएगा कि दुख से हटकर सुख में आएगा, आएगा और आएगा ही, यही बनेगा। क्या बनेगा? वैसे अपन गर्मी के दिनों में चलते हैं रास्ते पे, कहाँ चलेंगे? रास्ते में कुछ हिस्सा में छाया भी है, पेड़ का, मकान का, कुछ हिस्सा में धूप भी है सूर्य का, हम कहाँ चलेंगे? सहज रूप से छाया में चलेंगे। दोनों होते हुए भी चलेंगे कहाँ अपन? सहज रूप से हम छाया में जाएंगे। ऐसा साधक अवस्था में जब सुख प्रकट हुआ और वो सुख प्रकट करने का मार्ग मिल गया, उपाय मिल गया, और बाहर जो अंश में परिणाम जाता है उसमें दुख होता है प्रकट रूप से, सहज रूप से कहां जाएगा परिणाम? के अंदर ही जाएगा। ना शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो सहज रूप से वो बढ़ता जाएगा, वो परिणमन बढ़ता जाएगा और पूर्ण होकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है। जो भी विकल्प होता है उसमें दुख लगता है, मुमुक्षु की भूमिका में विकल्प का दुख लगता है तो ज्ञानी की दशा में कितना लगता होगा। अभी मुमुक्षु की दशा में तो शांति का अनुभव नहीं हुआ है तो भी जिस मुमुक्षु को विकल्प का दुख लगता है, पात्रतावश योग्यतावश ज्ञानी को कितना लगता होगा, तो वो तो वहां से हट करके स्वरूप में ही रहने की चाहना उसकी जो है, उसी के अनुकूल उसका परिणमन वृद्धिगत होता ही जाएगा। वो सब सहज है, लेकिन उनको सहज रूप से वहां से हटने का प्रयास हो जाता है, उसका निषेध आगे बिना रहता विभाव का निषेध है। जम का दूध समझो, उपयोग बाहर निकला के जम का दूध समझो, मृत्यु तुल्य वेदना होती है उसमें, क्या मृत्यु तुल्य वेदना होती है, तो फिर कहां तक रहेंगे उसमें, वो कि ज्यादा टिक पाएंगे नहीं। अपन भी कहते हैं कि यहाँ उसको सुहाता नहीं है, वो ज्यादा रहने वाला नहीं है। जैसे कहीं भी कोई आदमी जाता है, प्रदेश जाता है, सुहाता नहीं है तो वहां वो टिकेगा नहीं, वो चला आएगा वापिस। और भीतर में अनंत गुण का वैभव है, क्या भीतर में आत्म पदार्थ में आत्म स्वरूप में अनंत गुण का वैभव है वहां तो, और इस वैभव के आगे सारे जगत का जितना भी वैभव है वो कूड़ा कचरा समान है, क्या कूड़ा कचरा समान है। अपने उकड़ो के ऐसे गुजराती में हम देखे कि एक जगह वो आराम बाग हुए, क्रीड़ावन हुए, और बाहर एक उकड़ा कूड़ा कचरे का ढेर हुए, कहा जाएगा जी कि सहज रूप से वहां से हट करके भीतर में आ जाएगा। ऐसा अनंत गुण का वैभव भी है अंदर में, बहुत है, इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा वैभव है कि इसकी बात नहीं कर सकते, वैभव को भोगने वाले इसकी बात नहीं कर सकते। गुंगा की तरह समझाते हैं, जैसा गुंगा समझा रहे हैं, गुड़ खाता है गुंगा, शक्कर खाता है, क्या समझा रहे स्वाद को, तो उसकी चेष्टा से अच्छा लगता है, अच्छा ऐसा करे वो बात भूल सके नहीं, ऐसी बात है। ऐसा आनंद अंदर में वैभव बहुत है, हाँ उनको ये लगता है कि पूरा पूरा तो अंदर रहा नहीं जाता, और दूसरे लोग दुखी बहुत है सिर्फ अज्ञान के कारण, तो उनको रास्ता है उसको अंगुली निर्देश कर देना, जो रास्ता है उसका अंगुली निर्देश करते हैं और तो कोई बात नहीं करते, और उसमें भी अपना वो आत्मरस बढ़ाने की प्रक्रिया भीतर में चालू रखते हैं। हाँ उसकी उसके मैल से इनकी सफाई होती है क्या तो शुभ भाव तो मैले है, मैल सीधा नहीं, इसकी बाय प्रोडक्ट इसकी वाणी है, शुभ भाव निमित्त जो वाणी है उस वाणी से दूसरे को पवित्रता प्रकट होती है। कितनी पावरफुल चीज है चीज में पावर कितना, ऐसी बात है। जिसको वाणी मिलती है उसको पूजा करता है, वाणी की भी पूजा करता है, तो किसी इस परिणाम की पूजा क्यों नहीं करेगा? जब ज्ञानी की वाणी की पूजा की जाती है तो ज्ञानी के परिणाम और ज्ञानी खुद इसकी पूजा क्यों नहीं करेंगे? ये बात है, न्याय संपन्न बात है कि नहीं? इसलिए वो श्रीमद जी ने समीप दर्शन को वाचा दिलाई, उसकी तो कलम में बहुत ताकत है, तो समीप दर्शन को वाचा दे दी। समीप दर्शन बोलने लगा, क्या बोला कि अरे जी, अगर एक बार भी मेरा स्पर्श हो गया ना तुझे इस संसार में भ्रमण करते करते, अगर एक बार भी तुझे मेरा स्पर्श हो गया तो फिर तुझे संसार में भटकने का अभिप्राय और इच्छा होगी तो भी तेरी चलने वाली नहीं है, मैं तुझे खींच करके घसीट करके मुक्ति में ले जाऊंगा, संसार में तुझे भ्रमण करने नहीं दूंगा। अगर तेरी रुचि होगी ना, समझ तो निश्चित हो जाता है, संसार की रुचि हो जाती है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है, नहीं भ्रमण कर सकेगा, उनको भी फिर आना मोक्ष मार्ग में सहज रूप से आना होता है। हाँ, एक दफे सुख का स्वाद लिया, शांति का स्वाद लिया, फिर अशांति में कहीं भी थरी में ठाम होने वाला नहीं है, कहीं भी जमेगी नहीं उसकी, हर जगह से वो वापिस आ जाएगा कि नहीं ये नहीं ये नहीं, ये अपने को ठीक नहीं लगता है, ये बात हो जाती है। समृद्ध गुण प्रकट होने से सारा द्रव बदल जाता है, क्या होता है? सारा द्रव बदल जाता है, तो इसलिए उसको अल्पकाल में पूर्ण शुद्धता होगी होगी और होगी ही। तो इसलिए इस मार्ग में कोई भी जीव आ सकता है, इसका यही कारण है कि इसमें कोई संप्रदाय वाली तो बात नहीं रही, जीव और उनकी सुख शांति की बात है। और कौन जीव ऐसा होगा जो अपनी सुख शांति को नहीं चाहता हो? ऐसा कौन जीव होगा कि जो अपनी सुख शांति को नहीं चाहता हो? उनको समझ में आ जाए कि ये मेरे सुख शांति के लिए बात चल रही है, उसमें कहने वाले को कोई स्प्रहा नहीं है, ये तो मेरी सुख शांति की बात कर रहे हैं, वो खुद सुखी हुए हैं और दूसरे सुखी होने के लिए निष्प्रय रूप से बात बता रहे हैं। जैसे कोई निशुल्क सेवा देते हैं कि नहीं देते, संसार में भी लोग सेवा करते कि नहीं करते, निस्वार्थ सेवा जो करते हैं, तो ऐसे ज्ञानी ऐसे ही हैं कि जो सुखी हुए दूसरे के सुख शांति के लिए बता देते हैं रास्ता, तुम इस रास्ते पे चलो, जैसा मैं सुखी हुआ वैसे तुम भी हो जाओगे। कोई भी जीव उसको सम्मत करेगा, कहीं से भी आया हो सम्मत करेगा। हाँ, उनको तो सुख, सुखी तो सबको होना है, तो इसलिए यहाँ कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि फलाना नहीं आ सकता, वो बात इधर
नहीं है,
नहीं है, कोई भी आ सकता है, और कोई भी आएगा तो उसको जम जाएगी बात, थोड़ी भी विचार शक्ति होगी तो उनको बात जम जाएगी। इसलिए जो मार्ग के चलाने वाले हैं उनको हमेशा हमेशा सन्मार्ग को चलाने वाले का भय रहता है। क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास जो बात है वो हमारे पास तो है नहीं, यहाँ जाएगा वो तो वहीं छोड़ जाएगा, फिर तो हमारी दुकान पर आएगा ही नहीं, वो तो अपना पाखंड को तो अच्छी तरह जानता है, तुम हमारे बात में क्या पोल है, हम कैसे लोगों को कृत्रिम रूप से आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं, किस किस बात का ज्ञान निष्प्र होते हैं। देखिए भी सुख शांति का ये मार्ग है, उसकी वाणी में उतना अतिशय होता है, सामने वाले को उसका अंतरंग को स्पर्श कर लेती है वाणी, तो फिर उसके पास आने वाला फिर और जगह कहीं भी उसको जत्ता नहीं है। ऐसा द्रव्य का परिणाम है, क्या कहा, वो जीव मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है, ऐसा परिणाम स्वभाव है, परिणाम कह करके ऐसा परिणाम स्वभाव है कि सहज पानी ढलता है, वैसा परिणाम स्वभाव है कि मुक्त हो ही जावे, एक दफे अनुभव होना चाहिए, बस बात खत्म। और अनुभव की वो इतनी प्रशंसा इसलिए आगमों में कही, ज्ञानियों ने अपनी वाणी में कही कि जिसको अनुभव नहीं हो उसको अनुभव करने के लिए उनकी जो इंतजारी है उसकी क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है। अरे ऐसी बात है, एक दफे अनुभव करने से मुक्ति मिलती है क्या, तो अनुभव की उतनी प्रशंसा कर दी कि अनुभव करने के लिए जिसको अनुभव नहीं है वो लालायत हो जाते हैं, वो मुझे ऐसा अनुभव करना है, मुझे भी ऐसा अनुभव करना है, ऐसा उनको भी रहता है। ये बात है
जय।